नहीं बगुला
मिलेगा।
थोड़ी देर के बाद गिरना नहीं चाहिए।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 होम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यवेषधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे सबको सुनाई दे रहा है अंदर वाले बाहर वाले ऊपर वाले नीचे वाले। बाहर वालों को सुनाई दे रहा है अंदर वालों को पीछे वालों को। तो हम यहाँ पर आज अलारनाथ धाम में आए हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि इस विशेष अलारनाथ धाम में मुझे आप सबका संग मिल रहा है और हम सबका सौभाग्य है कि जगन्नाथपुरी धाम की परिक्रमा में हम सब शामिल हैं। जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे अपने प्रवचन में 2 दिन पहले कि धाम को देखना है तो अपने आंखों से नहीं देखना चाहिए, मटीरियल आइज। तो स्कंद पुराण में एक सुंदर श्लोक आता है बताते हुए, चिंतामणि भूमिकल्प वृक्षमय वन चर्म शक्षे देखे तार प्रपंचे रसम। जो धाम है चिंतामणि भूमि, इस धाम में प्रत्येक जो पत्थर है वो कैसा है? चिंतामणि। हमने चिंतामणि को देखा नहीं तो बोल दे चिंतामणि ऐसा है। चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष मय वन, प्रत्येक धाम हर चीज जो यहाँ पर वन है, फॉरेस्ट किससे भरा हुआ है? कल्प वृक्ष, डिजायर फुलफिलिंग ट्री। लेकिन बाद में कहा गया है चर्म चक्षय देखे तार, लेकिन हम जब चर्म चक्षु से देखते हैं अपने भौतिक आंखों से देखते हैं तार प्रपंच रसम, हमें सब कुछ ऑर्डिनरी दिखता है। क्या दिखता है हमें? हमें दिखता है कि सब जगह भीड़ है, सब जगह भीड़ है, पंडाल में भीड़ है, प्रसादम महल में भीड़ है, अरे बाथरूम जाने के लिए भीड़ है, सब के लिए भीड़ है, बस में भी भीड़ है, कई मंदिर में जाओ उधर भी भीड़ है। उसके अलावा देखते हैं हम यहाँ प्रॉब्लम है, इतना डिफेक्ट है, सड़क ठीक से बनाया नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, गटर ओवरफ्लो हो रहे हैं, गंदी बांस आ रही है। तो ये है चर्म चक्षु देखे तार प्रपंचेर सम। जो भारत, जो बंबई में देख रहे हैं, पूना में देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, वो सब यहां भी देख रहे हैं। लेकिन जब चर्म चक्षु का चश्मा निकाल दिया और शास्त्र चक्षु का चश्मा लगा दिया तो क्या होता है, पूरा आउटलुक चेंज हो जाता है। उदाहरण के रूप में चलिए आप कोई मंदिर में दर्शन के लिए गए हैं, उस मंदिर का आपने दर्शन ले लिया है कि नहीं। अभी आजकल बहुत मंदिर का दर्शन हो रहा है, ये भी पता नहीं कल क्या कहाँ गए थे, कल कहाँ गए थे, आठवण नहीं, कहाँ गए थे, शुद्ध बकुल, बाद में गंभीरा, चारों भट्टाचार्य, श्वेत गंगा, उसके पहले कहाँ गए थे, जगन्नाथ, आवाज कम हो गया देखो याद रहता नहीं ना। लेकिन एक चीज हो रहा है, सब जगह जितना दंडवत हम अपने हफ्ते में एक दो मारते हैं, यहाँ तो अभी हर पल में दंडवत मारना पड़ता है, लेकिन ये मंदिर में जाओ वहाँ दंडवत, सबसे पहला दिन का दंडवत होता है तो बड़ा प्रेम से भक्ति भाव से मारते हैं पूरा मंत्रवार। दूसरा मंदिर आता है तो वो दंडवत होता है शॉर्टकट, नमो विष्णु पदाय, हरे कृष्णा। तीसरा दंडवत होता है हरे कृष्णा सिर्फ दंडवत। चौथा दंडवत होता है हाफ दंडवत। पांचवा दंडवत, इतने सारे दंडवत। तो सोचिए वो सब पांच छह टेम्पल जाने के बाद आप बैठ गए और जब आपने कथा सुना, अरे बाप रे, जो मंदिर में मैंने दंडवत मारा नहीं उस मंदिर की इतनी सुंदर कथा है, लगता है फिर से जाना चाहिए उस मंदिर में, पूरे भक्ति भाव से दंडवत मारना चाहिए। तो आंखों से जब देखते हैं तो समझता नहीं है, लेकिन शास्त्र के चक्षु से जब सुनते हैं तो उस कथा उस जगह के बारे में पूरी विस्तृत वर्णन होता है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि यात्रा में दर्शन तो इंपॉर्टेंट है, दर्शन से इंपॉर्टेंट ज्यादा है और एक दर्शन। शास्त्र को भी क्या कहते हैं, दर्शन, दर्शन शास्त्र, ये दर्शन होना चाहिए। तो हमारे पूरे जगन्नाथपुरी यात्रा में देख रहे हैं हम, सुबह कथा, शाम को मैराथन कथा, दिन भर कथा कीर्तन और बीच में सेवा। तो इतना फुल्ली पैक हमारी यात्रा है, कितना आनंदमय यात्रा हो रही है कि नहीं। देखिए हम कब तक जगन्नाथपुरी में रहने वाले हैं, एक महीना, एक साल, पाँच साल,
14 तारीख तक,
उसमें अभी 3 दिन हो गए, आज 4th डे, 10 तारीख आए है ना। कभी कोई कौन सी तारीख कभी मालूम होती नहीं, कौन सा दिन कौन सा तारीख, ये धाम की विशेषता है, पूरी तरह से हम एब्जॉर्ब हैं यहाँ पर। लेकिन समय भी चल रहा है आगे, 14th के बाद, 14 तारीख के बाद हम कहाँ जाएंगे, अपने अपने स्थान में जाएंगे, फिर से वही प्रपंच में जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सुबह से शाम तक कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण के भक्तों का संग, कृष्ण प्रसाद, सब कुछ कृष्णमय है ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जैसे यात्रा बढ़ती है हमें अपने आप को फिर से याद दिलाना है कि डेज आर लेस, समय कम है, जितना चाहिए उतना बटोर लीजिए। तो इसलिए जगन्नाथपुरी यात्रा में हम आए हैं, हमें अधिकांश वक्त प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी यात्रा में हम सबसे ज्यादा जितना होगा उतना हम इस यात्रा का फायदा उठाएं, वो इम्पोर्टेंट है। तो जगन्नाथ पुरी क्षेत्र जो है इसे कहते हैं पुरी, पुरी का मतलब भवन या घर। किसका घर है जगन्नाथ पुरी, जगन्नाथ जी का घर है। पुरी, पुरी में जो रहता है उसे कहते हैं पुरुष, इसलिए इसका नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र, क्योंकि जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ जी रहते हैं। तो जगन्नाथ पुरी में ऐसा कहा गया है कि जगन्नाथपुरी और ये सब क्षेत्र का वर्णन अधिकांश स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। 18 पुराण में स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। स्कंद पुराण में 81,000 वर्सेस है, 81,000। प्रथम स्कंद पुराण का वर्णन भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, बाद में ब्रह्मा जी ने अपने भगवान शिव जी से कहा, शिव जी ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिक से कहा, बाद में कार्तिक ने जैमिनी ऋषि से कहा, और जैमिनी ऋषि ने बाद में मंदराचल में स्थित जो ऋषि थे उनको ये स्कंद पुराण सुनाई। उस स्कंद पुराण के विष्णु खंड के पुरुषोत्तम महात्म्य में पूरा वर्णन आता है जगन्नाथपुरी धाम का। और शुरू करने से पहले जैमिनी ऋषि बोलते हैं मंदराचल ऋषियों को, क्या बोलते हैं, FM 97 जैमिनी ऋषि बोलते नहीं इसमें 97 में आपको FM में ये कथा सुनाई देगी। तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं मंदराचल ऋषि पर्वत के ऋषि को, देखिए जगन्नाथ पुरी में बहुत सीक्रेट है, मुझे तो पता नहीं, जितना पता है बताऊंगा। इतने सालों पहले की बात है, वहां पर जैमिनी ऋषि जो परंपरा में सुना है वो बोल रहे इतने सीक्रेट से मैं सब बता नहीं पाऊंगा। और सही चीज भी है, आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी में पहले भी आए हुए हैं, हाथ ऊपर कीजिए। अधिकांश लोग आप देखेंगे जगन्नाथपुरी हमें यात्रा में जब आएंगे हमेशा कुछ ना कुछ नया स्टोरी सुनने मिलेगा। मैं 10-15 बार आया हूँ, यात्रा लेके भी आया हूँ, लेक्चर भी दिया हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ कुछ नयापन मिलता है सुनने के लिए, क्योंकि इतने सीक्रेट्स यहाँ पर है। ये जगन्नाथपुरी धाम है जहाँ पर हमें 8-10 दिन रहने का जो है मौका मिला है। तो जगन्नाथपुरी से हम यहाँ पर पधारे आज अलारनाथ क्षेत्र में। तो देखिए ये अलारनाथ क्षेत्र जो है ये काफी प्राचीन क्षेत्र है, इसे कभी कहते हैं अलारनाथ, कभी कहते हैं अलारनाथ। तो ये नाम कैसे आया, इसका ओरिजिनल नाम आया था जिसका नाम पड़ा वो है अलवारनाथ। दक्षिण भारत के जो श्री संप्रदाय में, जैसे हमारे संप्रदाय में 12 महाजन हैं उसी तरह उनके 12 अलवार हैं जो उनके प्रमुख आचार्य हैं जिनके द्वारा अलग अलग शास्त्र लिखी गई, तो वो 12 अलवार से ये प्लेस का कनेक्शन है, इसका हम कथा सुनेंगे थोड़ी देर में। लेकिन इससे पहले जानना चाहिए कि ये जो मंदिर जहाँ बैठे हम, ये गौड़िया मठ मंदिर है, इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन हम बताएंगे अंत में। लेकिन बगल में हम अलवारनाथ अलारनाथ का मंदिर है, तो ये जो मंदिर है अलारनाथ का, ये चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण का मंदिर है। और ऐसे कहा गया है कि एक तरह से देखेंगे तो ये चतुर्भुज जो नारायण का रूप है, हमारे आचार्य कहते हैं कि वो नारायण नहीं है। क्यों, चार भुज है, चार हाथ है तो नारायण होना चाहिए। तो कहते हैं हमारे आचार्य कि एक हाथ जो है अभय मुद्रा में है, तो जनरली नारायण के चारों हाथ में कुछ न कुछ चिन्ह होते हैं, लेकिन इनका एक हाथ अभय मुद्रा, अभय मुद्रा में जो अभय दान देता है, आशीर्वाद देने वाला मुद्रा। तो आचार्य कहते हैं हमारे कि अभय मुद्रा इसका मतलब ये भगवान नारायण नहीं, ये तो भगवान कृष्ण है। तो ये जो स्पेशल डीटी है इसका काफी पुराना ओरिजिन है। लगभग जगन्नाथपुरी मंदिर जब बना था उसके काफी बाद ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी यहाँ पर आए तपस्या करने के लिए। बहुत तपस्या करने के बाद यहाँ पर पर्वत था, इस क्षेत्र का नाम है ब्रह्मगिरी, गिरी का मतलब पर्वत, गिरी गोवर्धन है कि नहीं, वैसे ब्रह्मगिरी, इस क्षेत्र का नाम ब्रह्मगिरी पड़ा क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर के तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा को कहा कि जिस क्षेत्र में आप तपस्या कर रहे हैं मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक सुंदर विग्रह की आप स्थापना कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो विग्रह कहाँ मिलेगा, भगवान ने कहा आपको ही बनाना पड़ेगा। अच्छा कैसे बनाऊ मैं, आपको सब जो चाहिए वस्तु सब एम्पावरमेंट सब दूंगा मैं, और कैसे बनाना है यही बताऊंगा। तो पूरा डिटेल वर्णन किया कैसे चार हाथ होना चाहिए, कैसे उनके हाथ होने चाहिए, सब वर्णन करके ब्रह्मा जी ने एक काले पत्थर पर उस विग्रह को बनाया और उसकी स्थापना यहाँ पर की। तो ऐसा कहा जाता है कि काफी साल तक, काफी वर्षों तक ये डीटीस यहाँ पर रहे, और उसके पश्चात साउथ इंडिया के जो ब्राह्मण्स थे वो हमेशा जगन्नाथपुरी आते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन ब्राह्मण जो होते हैं उनका एक या साउथ इंडिया में श्री संप्रदाय से कनेक्टेड लोग हैं, उनका भी एक यात्रा होती है, उनकी उनके उनका भी एक मकसद है, एक उनका एक विचार है कि अपने जीवन में 108 यात्रा होनी चाहिए। उनके 108 दिव्य देशम है, उसका एक दिव्य देशम जगन्नाथपुरी भी है, तो यहाँ पर भी आते हो। तो यहाँ जब आते हैं तो आते आते हो यहाँ पर से इधर भी आए, भगवान ने उनको प्रेरित किया, यहाँ आकर चतुर्भुज रूप का दर्शन लिया, बड़े खुश हो गए और उन्होंने मन में स्थापन कर लिया कि यहीं पर रहेंगे, चलो इनकी सुंदर पूजा करेंगे। ऐसे करते करते यहाँ पर काफ़ी साउथ इंडियन ब्राह्मण लोग रहने लगे और पूजा करने लगे। काफ़ी काल बीत गया, क्योंकि ये जो भक्त यहाँ पर सेवा कर रहे थे इसलिए कुछ काल में इस भगवान का नाम पड़ा अलवारनाथ, क्योंकि ये कौन थे, अलवार के भक्त थे, अलवार आचार्य के वो संप्रदाय में थे, इसलिए अलवारों का नाथ अलवारनाथ, बाद में आगे चल के अलारनाथ बन गया। तो यहाँ पर बड़े संख्या में साउथ इंडियन डिवोटीज थे यहाँ पर, लेकिन कहा जैसे आगे बढ़ते गया ऐसे कहा गया है कि पुजारी लोगों का जो है उनका भक्ति थोड़ा कम हो गया, श्रद्धा कम हो गई भगवान पर। तो एक काल ऐसे आया कि एक कहानी है, ये कहानी बिल्कुल रघुनंदन ठाकुर जो श्रीखंड ग्राम के जो है जिन्होंने लड्डू खिलाया गोपीनाथ जी को, वैसे ही ये कहानी है, लेकिन डिटेल अलग है पूरा। तो यहाँ पर श्री केतन नाम के एक ब्राह्मण थे जो वहाँ के हेड पुजारी थे, तो उस समय उन्होंने रोज जो भगवान को भोग लगाते थे वो खीर का भोग लगाते थे। तो एक दिन ऐसा हो गया कि उनको बाहर जाना पड़ा, तो बाहर जाना पड़ा तो खीर का भोग कौन लगाएगा। तो उन्होंने अपने छोटे बच्चे को बुलाया जिसका नाम था मधु, और मधु से कहा कि बेटे मैं बाहर जा रहा हूँ, आज खीर का भोग तुम अलारनाथ को लगा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं, भगवान के सामने पेट रखना है, थोड़ा मंत्र गा लो बस, बाहर आ जाओ, बाद में अंदर जाओ, खत्म, ऑपरिंग हो गया, ठीक है कर देंगे। छोटा बच्चा मधु, वो पिताजी जाने के बाद मदर से उसने माताजी से खीर लिया, ऑल्टर में गया, रख दिया प्लेट, मंत्र वंत्र जो भी आता था बोल दिया और भगवान से कहा खाना भूलना मत, मैं खेल के आता हूँ। तो बाहर खेलने गया, 15 मिनट के बाद फिर से आया, देखा तो क्या, स्वीट राइस एज इट इज है कि नहीं। तूने कहा भगवान आपको कम समय था क्या, 15 मिनट खाए नहीं आप, प्लीज खाइए। फिर से बाहर गया, 15 मिनट के बाद आया, फिर से खीर ऐसे। तो बहुत घबराने लगा कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा ऑफरिंग लगाओ, शायद मैंने ऑफरिंग ठीक से लगाया नहीं होगा, भगवान खा नहीं रहे तो भगवान तो शायद पिताजी नाराज हो जाएंगे। तो रोने लगा, भगवान से कहा कि अगर आप नहीं खाएंगे तो पिताजी नाराज हो जाएंगे, छड़ी से मारेंगे, कृपया प्लीज मेरे लिए आप खा लीजिए। तो भगवान खाने रहे थे, तो बहुत गिड़गिड़ा के याचना करने लगा, भगवान प्लीज खाइए। देखो इतना सरलता था, इतनी भक्ति थी, भगवान ने उठा लिया स्वीट राइस अपने हाथ से और पी लिया, बड़ा खुश हो गया वो, खाली प्लेट लेके बाहर चले गया, माँ को प्लेट दे दिया, माँ ने कहा खीर कहाँ है, तो कहा भगवान ने खा लिया। तो माँ को लगा अरे इतने सालों से इसके पिताजी ऑफरिंग कर रहे थे, खीर तो बाहर आ रहा था, आज खीर कम कैसे होगा, खत्म कैसे हो गया, ये लड़की ने तो खीर नहीं खाया ना, उसको डांटा फटकारा लेकिन फिर भी बोल रहा था अरे आपने ऑफरिंग करने बोल दिया तो मैंने ऑफरिंग किया, भगवान ने खा लिया। उसके बाद पिताजी आए श्री केतन जी, और माता ने कहा, पति ने कहा कि उनको कि देखो क्या हो गया है, स्वीटर अंदर गया बाहर आया नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है। तो बड़ा डांट फटकार के बच्चे से पूछा, तो बच्चे ने कहा आपने कहा तो मैंने ऑफरिंग किया, बहुत गिड़गिड़ाया, रोया पीटा तो भगवान ने खा लिया। श्री केतन ने देखा कि मेरा लड़का कभी झूठ बोलता नहीं, तो सच सच में कुछ सत्य हो सकता है। तो कहा अपने वाइफ से और खीर बनाओ, चलो और एक बार ऑफरिंग लगाओ। तो ऑफरिंग लगाया, एक खंभे के पीछे खड़े होकर श्री केतन देख रहे थे, ऑफरिंग लगा के बच्चा बाहर गया, 15 मिनट के ऑफिस बच्चा अंदर आया, ऑफरिंग वैसा ही, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया और कहा कि पहले आपने खाया अभी क्यों नहीं खा रहे हो, खाइए, आप नहीं खाएंगे तो मेरे पिताजी नाराज हो जाएंगे। तो भगवान बड़े खुश हो गए और भगवान ने अपना हाथ आगे किया और वो ऑफरिंग को उठा रहे थे, श्री चेतन बड़ा दुखी हो गया क्योंकि स्वीट राइस खत्म हो रहा था। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो भगवान, मैंने कभी देखा नहीं कोई पत्थर की मूर्ति को स्वीट राइस खाते हुए, तो आज क्यों खा रहे हो, इतने साल कभी खाया नहीं आज क्यों खा रहे हो। और भगवान का हाथ पकड़ लिया और भगवान को कहा अगर आप खाने लग जाओगे तो हमारा क्या होगा। और भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, वो भगवान थोड़ी स्वीट राइस खा रहे थे, भगवान क्या खा रहे थे, उस बच्चे का प्रेम खा रहे थे। तो भगवान नहीं मैं खाऊंगा, अरे नहीं खाना है, सोचिए पुजारी है वो। ऐसे पुजारी से दूर रहना चाहिए। तो उसमें हाथापाई हो गई, उतना गर्म स्वीट राइस था वो भगवान के हाथ पे गिर गया, भगवान का हाथ जल गया और डीटी के ऊपर अभी भी निशान है जले हुए खीर का। तो भगवान क्रोधित हो गए, मतलब मूर्ख भौतिकवादी पुजारी, इतने साल से पूजा किया कुछ भी मैंने अर्पण स्वीकार नहीं किया क्योंकि तेरा मन में क्या विश्वास है कि मैं जो हूं मूर्ति हूं। और कहा कि इतना बड़ा प्रलोभन है, एक बच्चे ने, आपका बच्चा आपसे ज्यादा भक्ति कर रहा है, सरल है, इसलिए उसको ऑफरिंग मैंने स्वीकार किया, आपका ऑफरिंग कभी स्वीकार नहीं किया मैं जन्म तक, और इतना आपका दुर्व्यवहार हमारे साथ में है तो मैं बोलता हूं कि ये लड़का कुछ समय में वैकुंठ चले जाएगा और आप सब लोग नरक में जाएंगे। और ऐसा होते होते ये पूरा गांव उद्भस्त हो गया, सारे के सारे जो साउथ इंडियन लोग थे वो जो सब लोग उसी तरह श्री केतन की तरह ही थप थे, अश्रद्धालु थे, बस अपना भगवान को दिखाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, तो भगवान ने उनको दंड दे दिया। ऐसे कहा जाता है कि भगवान जो भगवान वर्ष विग्रह के रूप में आते हैं वो लगते हैं कि शांत बैठे कुछ करने रहे, सब अत्याचार देख रहे, वो उनका टॉलरेंस लेवल में चलते रहता है, उसके बाद उनका भी कुछ एक प्रकोप आता है। जगन्नाथपुरी में हमेशा ऐसा होता है, मुझे किसी ने कहा कि जगन्नाथपुरी मंदिर में बहुत ऐसे गलत प्रथा चल रही थी, तो जगन्नाथ जी ने क्या किया, एक बड़ा साइक्लोन लेके आ गया, पूरा पूरी का पूरी पूरा ध्वस्त हो गया। उसके बाद वहाँ के पुजारी को पता चला कि ज़्यादा भी करना, वो करते हैं गड़बड़ लेकिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा करने का क्या होगा, महागड़बड़ हो जाएगा हम पर। तो उसी तरह यहाँ पूरा जो है प्रकोप होने के कारण कुछ भी नहीं रहा यहाँ। फिर भगवान स्वयं अलारनाथ उस समय के राजा पुरुषोत्तम देव महाराज के सपने में आके कहे, देखो मेरी सेवा पूजा करने के लिए कोई नहीं है, जगन्नाथ जी टेम्पल से, जगन्नाथ के टेम्पल से पुजारियों को यहाँ भेजो। तो इस तरह से जगन्नाथ टेम्पल के पुजारी यहाँ पर आए 400-500 साल पहले और उसके बाद उनके वंशज यहाँ पर अभी पूजा कर रहे हैं। तो ये वर्णन है यहाँ के सुंदर अर्च विग्रह का। ऐसे कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु भी अलारनाथ यहाँ पर आए, कब आए ये इम्पोर्टेंट है जानने का। मैं आज एक डिवोटी से यहाँ पूछ रहा था, लोकल डिवोटी से, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ कब होती है। आप बोलेंगे शायद हमारी चौपाटी की यात्रा आती तभी भीड़ होती, मतलब बिल्कुल नहीं, सबसे ज़्यादा भीड़ आती है यहाँ पर जब 15 दिन जगन्नाथ जी अनवसर ट्रांसेंडेंटल बीमार पड़ जाते हैं, जगन्नाथपुरी में दर्शन बंद हो जाता है, सब लोग यहाँ आते हैं। और कभी कभी इतनी भीड़ होती है कि लाइन यहाँ से लेके मेन रोड तक जाती है, तो हमारी लाइन छोटी मोटी है, टेंशन मत लो। तो 15 दिन तक यहाँ पर जो है इस यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो प्रति दिवस गंभीरा से जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ टेम्पल में जाके दर्शन लेते थे, नित्य नियम से उनका नियम था। वो आएंगे गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े रहेंगे, आपने देखा जगन्नाथ टेम्पल में गरुड़ स्तंभ, वो गरुड़ स्तंभ के पीछे वो देखा आपने तीन उंगली के निशान, कहाँ पर है, दीवार पे, काले दीवार पे, दिखेगा नहीं, थोड़ा टच करके देखना पड़ेगा। वहाँ खड़े रहकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन लेते थे और चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो जाते थे। वो भाव विभोर में उनके हाथ के जो निशान उस पत्थर, क्योंकि उनके टच से पत्थर भी पिघलता था, पत्थर में निशान आ गए। और ऐसा कहा गया कि उस समय 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब थे तो उस एरिया में छोटा एक गड्ढा था ऐसे, तो महाप्रभु अश्रुपात करते थे, सारा अश्रु निकल कर उस गड्ढे में जमा हो जाता था, हर दिन अश्रुकुंड हो जाता था वहां पर। और जिस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु खड़े रहते थे उसके नीचे का पत्थर भी मेल्ट हो गया, वहाँ पर दो जो भगवान के चैतन्य महाप्रभु के पैरों के निशान आ गए वहाँ पर। तो आज तो पैरों के निशान दिखते नहीं, क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीला प्रकट करके चले गए तो प्रताप रुद्र महाराज ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ तो यहाँ पर करना चाहिए। तो प्रताप रुद्र महाराज और उनके अनुयायी ने वो जो पत्थर है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह है, उस पत्थर को निकाल कर जगन्नाथपुरी टेम्पल है ना, टेम्पल के प्रांगण में चैतन्य महाप्रभु का एक चरण पादुका है, देखा आपने? देखिए अगर आगे बढ़ जाएंगे तो छोटा मंदिर है, वहाँ पर स्थापित कर दिया। बड़ा छोटा मंदिर है, प्रताप रुद्र महाराज के द्वारा स्थापित है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने उसी का रेप्लिका बना के जहाँ पर भी वो भारत में घूमे वहाँ पर वो चैतन्य महाप्रभु का फुटप्रिंट्स को उन्होंने स्थापित कर दिया। महाप्रभु हर दिन दर्शन लेने के बाद प्रांगण में आते थे और एक जगह बैठ खड़े रहकर अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते थे। तो स्मृति में प्रताप रुद्र महाराज ने उसी स्थान पर चैतन्य मंदिर करके एक स्थापना कर दी। वो मंदिर भी आप देख सकते हैं, मंदिर के प्रांगण में जब आप चैतन्य महाप्रभु का फुटप्रिंट से आप जब स्ट्रेट जाएंगे तो क्या आएगा? आनंद बाजार आएगा। देखिए आनंद बाजार के पहले राइट टर्न में चैतन्य महाप्रभु का मंदिर वहाँ पर है। ऐसे अलग अलग स्थान पर प्रताप रुद्र महाराज ने चैतन्य महाप्रभु का जो है स्थान इंगित किया है। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ होने के वक्त, जगन्नाथ दर्शन चल रहा है तब भी इतने भाव विभोर होते थे। गंभीरा में कभी कोई रात को चैतन्य महाप्रभु की इच्छा होती थी जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए और भाग जाते थे गंभीरा से और देखते थे दरवाजा बंद है तो कोशिश करते थे दीवार चढ़ने का, नहीं चढ़ नहीं पाते थे। फिर उसी बीच में एक लीला हुई कि चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर इतने मग्न हो गए, उनके शरीर के सारे अंग अंदर चले गए और भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु एक कुर्म के रूप में कुर्म अवतार ले लिए थे। तो एक कहानी वो है। दूसरे बार चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं मिला रात को तो वो समुद्र में चले गए, वो फेमस स्टोरी है। समुद्र में आ गए, कोनार की तरफ चले गए, एक मछुआरे ने पकड़ लिया उनको, तो उसको क्या हो गया? वही भाव विभोर हो गया। तो जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन मिल रहा है तो चैतन्य महाप्रभु इतने भाव विभोर थे, तो सोचिए जब 15 दिन दर्शन नहीं मिल रहा है चैतन्य महाप्रभु का अवस्था क्या होगा। तो चैतन्य महाप्रभु इतने व्याकुल हो गए कि वो पूरी से बाहर निकल के ढूंढ ढूंढ के फिर इस क्षेत्र में आए। इस क्षेत्र में आके चैतन्य महाप्रभु जब अलवारनाथ का दर्शन किया तो बड़े खुश हो गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा कि ये जगह जो है वृंदावन से अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, इस भगवान के अर्च विग्रह को देख के कहा कि ये तो स्वयं कृष्ण है। जैसे भगवान के 10वें स्कंद में लीला है कि रास लीला, इसमें जिसमें भगवान श्री कृष्ण गोपियों की रास लीला से वो दूर चले जाते हैं, ओझल हो जाते हैं और सारी गोपियाँ ढूंढते रहती है भगवान कहाँ है। तो गोवर्धन में वसंत पंचमी के दिन वसंत लीला और रास लीला होती है तो ढूंढते ढूंढते पूरे गोवर्धन ढूंढते ढूंढते वो पैठा जगह में आते हैं, एक जगह का नाम पैठा। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उनको ट्रिक करने के लिए चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं। तो गोपियाँ आती है भगवान से पूछती है हे नारायण, ओम नमो नारायण, और कहते हैं कि आपने भगवान कृष्ण को देखा है नारायण जी? तो नारायण भगवान जो है अपने दो हाथ, चार हाथ में से दो हाथ बोलते हैं यहाँ चले गए कृष्ण। तो गोपियाँ चली जाती हैं। उसके बाद श्रीमती राधा रानी आती है अकेली, तो वही ट्रिक आजमाना चाहते हैं भगवान। राधा रानी आके पूछती है आपने श्याम सुंदर कृष्ण को देखा है? अभी क्या बोलेंगे भगवान? तो राधा रानी को देख के वो भी खुद भाव विभोर हो गए, अपने आप को संभाल नहीं पाए, उनके जो चार दो एक्स्ट्रा हाथ आ गए थे वो पिघल गए और क्या बज गया? दो हाथ बज गया और श्याम सुंदर के रूप में आ गए। तो चतुर्भुज का रूप जो दिखता है लेकिन है भगवान स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण। तो कैसे, मैंने बोला ना अभय दान के रूप में यहाँ भगवान खड़े हैं। तो काफ़ी लोगों की यहाँ पर धारणा है कि भगवान नारायण है, लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव है सोचते कि ये जो है भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ से अभिन्न है। तो 15 दिन चैतन्य महाप्रभु ने जो जगन्नाथ जी का जो उनको ये हुआ सेपरेशन, उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया अपना दिन और उनको यहाँ पर अलारनाथ के समीप उनको वो एक्सटेसी भाव विभोर आए। और यहीं पर मंदिर के अंदर एक जगह है जहां पर चैतन्य महापुरुष होते थे रात को, लेकिन उनके भाव विभोर एक्सटेसी से वो पत्थर में पिघल गया और उस पत्थर में चैतन्य महापुरुष के शरीर के अलग अलग अंगों का जो है निशान आ गया। वो पत्थर भी यहाँ पर आप देखेंगे मंदिर में आज। तो इस तरह से ये बहुत प्राचीन स्थान है और गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। 100 साल पहले अभी 2018 है, 1918 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद पहली बार यहाँ पर आए, 100 ईयर्स बराबर, और यहाँ पर आए, छोटा मंदिर यहाँ पर था और आके इतने खुश हो गए कहा कि यहाँ पर रहना चाहिए हमें, ये वृंदावन है, वृंदावन से अभिन्न है। तो आगंतुक काल में बार बार आए और उन्होंने बाद में ये मंदिर की स्थापना की। ये जो डीटीस यहाँ पर है इनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने कहा गोपी गोपीनाथ, क्योंकि यहाँ पर कौन है, गोपीनाथ है, तो गोपी गोपीनाथ मंदिर है यहाँ पर है। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने मंदिर बांधा यहाँ पर, ये भगवान के उच्च विग्रह की स्थापना की, काफ़ी समय तक यहाँ पर रहे। अलारनाथ का मंदिर उस समय ज़्यादा इतना अच्छा पोजीशन में था, तो ऐसे कहा गया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि इस मंदिर को सुधारना चाहिए, सीमा द्वार उनके जो बाउंड्री वॉल है मंदिर का बहुत सारा रेनोवेशन चालू किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने। और रेनोवेशन के वक्त जो है ना काम बहुत धीरे चल रहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद खुश नहीं थे उससे, वो बोल रहे थे वर्कर लोग को अरे काम जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन यहाँ की प्रथा जो यहाँ के लोग बॉम्बे ऐसे लोग नहीं है यहाँ पर फास्ट करने वाले, हाँ करेंगे आराम से, टेंशन क्यों लेने का, तो काम करने वाला टेंशन लेता नहीं, जो काम कराता है उसको टेंशन आता है। जैसे हमारे दाऊजी पू यहाँ बैठे है, वो हमारे पंडाल इंचार्ज है, तो ये बात पहली बार ऐसे हुआ यात्रा में कि हमारा पंडाल 12 बजे रात के 12 रात को 1 बजे तक चल रहा था पूरा काम बनने का, और बाद में नेक्स्ट डे सुबह गोवर्धन पूजा थी। सोचिए ऐसे कभी हुआ नहीं, हमारा पंडाल पूरी तरह से बन जाता है 24 घंटे पहले, सब काम हो जाता है, भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो हमने पूछा कि भाई इतना लेट क्यों हुआ, यहाँ के लोग ही ऐसे काम ही नहीं करते, काम करके यहाँ वहाँ निकल जाते, पकड़ पकड़ बुलाना पड़ता है, काम करवाना पड़ता है। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को भी यही प्रॉब्लम हो गया, तो उन्होंने पूछा अरे भाई काम क्यों नहीं कर रहे हो आप, तो कहा कि ये जंगल में बीड़ी बीड़ी काम मिलती नहीं है उनको, जब तक बीड़ी नहीं जाएगी अंदर कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस समय ऐसा कुछ कार्य किया जो हमको कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आचार्य है, उन्होंने कहा कि ये विरह में इतना थे हो कि अलारनाथ का मंदिर बनने रहा है, उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथों से बीड़ी बना के आपको दूंगा, लेकिन काम फास्ट करो। अच्छा काम फास्ट करा ये मंदिर का, उन्होंने पुनः रेनोवेशन किया। तो रेनोवेशन के वक्त ऐसा कहा गया है, जब रेनोवेशन चल खुदाई चल रही थी तो यहाँ के पंडा को अलारनाथ जो बड़े विग्रह है इतने बड़े अंदर, उनका एक छोटा उत्सव विग्रह मिला बिल्कुल वैसे ही ब्लैक स्टोन का वही रूप में। तो बड़े खुश हो गए, पता नहीं कितने पुराना डीटी होगा अंदर जमीन के अंदर था, तो निकाला उन्होंने ऑल्टर में रख दिया वहाँ पर। अलारनाथ उस पुजारी के सपने में आके कहा कि देखिए ये अर्च विग्रह मेरा ही अर्च विग्रह है, लेकिन मेरे प्रेमी भक्त श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बगल में रहते हैं, आप कृपया करके इस छोटे अर्च विग्रह को उनको दे दीजिए, वो पूजा करेंगे। तो वो अर्च विग्रह अंदर जो छोटे थे वो पुजारी लाके श्री सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को दिया, और यहाँ पर आप देखेंगे वो अर्च विग्रह है छोटा लेफ्ट साइड में, तो देखिए दिखेगा बाद में आपको अगर दिख नहीं रहा। तो ये यहाँ पर जो है उसे बताया बाद में लाइन लगने वाली है। तो इस तरह से यहाँ पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सारी लीलाएं की यहाँ पर रहे, और ये पवित्र स्थान जहाँ बैठे हैं हम उनके आश्रम बैठे हैं, उनकी उनका हम कृपा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उनके वजह से ये धाम आज पूरा प्रकट हुआ है। आज समस्त गौड़ीय वैष्णव यहाँ की बात है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस स्थान को बहुत महत्व दिया है, तो इसलिए हम सोचे कि वहाँ कथा करने के बदले हम यहाँ कथा करना चाहिए, क्योंकि इस कथा यहाँ कथा करने में ज़्यादा आनंद आएगा और यहाँ कथा करने में ज़्यादा आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ऐसे कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने जब दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की, उनका पहला स्टॉप जैसे बॉम्बे में आते हैं ना, बॉम्बे में तो आप उतरते ट्रेन में चढ़ते अगला स्टॉप बोरीवली। तो चैतन्य महाप्रभु का फर्स्ट स्टॉप अलारनाथ था। अलारनाथ में नित्यानंद प्रभु ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने अपना पूरा सैंपल दिखा दिया कि क्या करने वाले हैं साउथ इंडिया यात्रा में। वो यहाँ के सारे लोगों को इतना नचाया, बूढ़े नाच रहे थे, जवान नाच रहे थे, माताजी नाच रहे थे, सबको भाव विभोर कर दिया। और नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य चरिता में वर्णन आता है श्लोक का, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, यही रूपे नृत्य आगे होबे ग्रामे ग्रामे। ऐसे प्रकार का भाव विभोर नृत्य हर गांव में होगा। क्यों कहा ऐसे? क्योंकि उनको पता था चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को यहाँ से रिटर्न टिकट देने वाले कि जाओ ऑफिस पूरी जाओ, मेरे साथ कोई आना नहीं चाहिए, मैं और काल कृष्णदास आने वाले जाने वाले बस। तो यहाँ उन्होंने सैंपल दिया और यहाँ के बाद आगे चैतन्य महाप्रभु निकले। फिर बाद में आने के वक्त जब दक्षिण भारत की यात्रा होगी फिर से इस स्थान पर आए, और इस स्थान पर आने के बाद लोगों को सूचना मिली पूरी में चैतन्य महाप्रभु आ गए, सब भक्त भाग के आए चैतन्य महाप्रभु का यहाँ वेलकम करने के लिए। तो ये स्थान जो है यहाँ पर अलवारनाथ है, चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर उपस्थित है। ये स्थान इतना इम्पोर्टेंट है कि बड़े बड़े भगवान के एसोसिएट का जन्म इस स्थान पर हुआ। यहाँ से बस 10 मिनट दूर एक जगह है जिसका नाम है, पहले का प्राचीन नाम है वेंकटपुर, जो अभी बेंटपुर के नाम से प्रसिद्ध है। चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे अनुयायियों में 3.5 अनुयायी बड़े खास थे। 3.5, 3.5 का मतलब क्या है? 3 और आधा। 3 कौन है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय और तीसरा शिकी माइती। आपको माइती नहीं होगा शायद, शिकी माइती, और हाफ जो है माधवी देवी, क्योंकि माताजी थी इसलिए उनका एसोसिएशन इतना घनिष्ठ नहीं था, लेकिन शी इज काउंटेड एज वन ऑफ द वेरी वेरी क्लोज एसोसिएट्स। ये 3.5 भक्तों का जो संघ है इसमें से 2.5 भक्त यहाँ पर उनका जो जन्म हुआ है इस स्थान पर। रामानंद राय का यहाँ पर घर है, रामानंद राय के जो पिताजी भावानंद राय जो द्वापर युग में पांडु थे, उनके 5 पुत्र पांडव रामानंद राय और गोपीनाथ पटनायक, वाणीनाथ पटनायक इत्यादि, ऐसे 5 भाई निकले, उनका जन्म यहाँ पर हुआ। शिकी माइती का जन्म यहाँ पर हुआ और माधवी देवी का भी जन्म यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर नज़दीक है, हमारे बस वहाँ जाएंगी नहीं तो हम जा नहीं पाएंगे वहाँ पर, इसलिए सब कथा यहाँ ही बता रहा हूँ। तो ये है, इतना सुंदर धाम है अलवारनाथ का। अभी ये धाम में देखिए, आप बोलते हैं चर्म चक्षु, अगर हम भारी रूप से इस धाम को देखेंगे तो एक और चीज़ नज़र आएगा कि कैसे पुजारी हमको तकलीफ दे रहे हैं। और यहाँ तो एक स्पेशल प्लेस है जहाँ तो सुबह स्पेशल तकलीफ मिलने वाला है आप लोगों को, इसलिए पहले यहाँ पर आके आपको बता रहे हैं कि आप जहाँ जाने वाले हो ना वो दर्शन आपको मैंने दे दिया है अभी कथा के रूप में, लेकिन आगे का दर्शन कैसे होगा ये आप और भगवान के बीच में है। हाँ, यू आर एंटरिंग अ डेंजर जोन सच में। अभी आपको हमारे धाम से बताएंगे किस तरह से आपके आपको अपने आप से सच करना चाहिए, कैसे दर्शन देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम बड़ा है, और आपको जान के बड़ा खुशी होगा कि आज आपका स्पेशल दिवस है, क्योंकि यहाँ एक प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्लेस कहाँ पर आपका, वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, तो आज प्रॉब्लम डे है। लेकिन ये दो जो स्थान है वो बहुत प्राचीन स्थान है, बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, तो जब मर्सी मिलता है तो थोड़ा तकलीफ होना स्वाभाविक है। तो ये पुजारी लोग जो अक्सर आपने पुजारियों को देखा होगा इस्कॉन टेम्पल में हंसते हैं, प्रसाद देते हैं, लेकिन ये स्पेशल यहाँ पर है, मर्सी मिलने वाला है। तो कैसे जाना चाहिए इसका वर्णन बाद में नंदूलाल को करेंगे। तो ये अलारनाथ के बाद हम नेक्स्ट जाने वाले हैं साक्षी गोपाल। समय कम है, जल्दी दर्शन लेंगे, जल्दी निकलेंगे तो साक्षी गोपाल का दर्शन होगा, और साक्षी गोपाल का दर्शन होगा जल्दी पहुँचेंगे तो प्रभु का दर्शन होगा, प्रसाद प्रभु के साक्षात दर्शन है कि नहीं। तो देखिए, जो मंदिर में जाने बोला है वहाँ दर्शन कीजिए, क्योंकि दर्शन मंदिर के अंदर बहुत सारे मंदिरें होती है ना। जैसे कल भुवनेश्वर में मैं था, आपका ग्रुप भुवनेश्वर गया है ना? तो भुवनेश्वर में कहा गया है कि कितने शिवलिंग हैं, 1 करोड़ शिवलिंग। तो मैंने भक्तों को कहा देखो 1 करोड़ शिवलिंग का दर्शन करेंगे तो क्या होगा, पहुँचेंगे नहीं हम पंडाल में, 10-15 एक्स्ट्रा भी कर लिया तो भी डिफिकल्ट है, दो दिन से देख रहे भक्त लोग सब जगह माठा देख रहे, सब जगह पूजा कर रहे हैं, 2:30 बजे पहुंच रहे प्रसाद के लिए। तो जितना बोला उतना कीजिए, बाकी सबका आशीर्वाद मिल ही रहा है आपको मेन ड्यूटी से। तो यहाँ पर भी अलारनाथ है, और यहाँ पर और एक स्थान मुख्य है, वो है चैतन्य महाप्रभु का वो पत्थर जहाँ पर उनके शरीर का चिन्ह है। ये दो स्थान आवश्यक है, बाकी सब जगह बोलेंगे यहाँ जाओ यहाँ पर भी आओ, आपको दुर्लक्ष करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए जब अलारनाथ में है नेक्स्ट स्टॉप, ये मंत्र जप करते रहिए, अगला स्टेशन साक्षी गोपाल, और साक्षी गोपाल में अगला स्टेशन प्रसादम पंडाल। ये ध्यान रखिए ये मंत्र को, बस फिर गाड़ी आगे फटाफट चलेगी। तो अगला स्थान हम जाएंगे साक्षी गोपाल, उसकी कथा भी यहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ टाइम नहीं मिलेगा। तो साक्षी गोपाल का कथा भगवान अपने परम पूज्य राधानाथ महाराज ने 2 दिन पहले ऑलरेडी आपको बता दिया था, आपको याद है। तो ये डीटी के स्टोरी में दो भक्त इन्वॉल्व थे, कौन थे वो दो भक्त, कौन से ब्राह्मण, एक जवान ब्राह्मण एक वृद्ध ब्राह्मण। जवान ब्राह्मण अमीर था कि गरीब था, वृद्ध ब्राह्मण अमीर था। उसके बाद ये कहाँ से डीटी आए, ये साक्षी गोपाल के वृंदावन से, तो ये इन्फॉर्मेशन मिल गया हमको। साक्षी गोपाल, प्रभुपाद कहते हैं विटनेस गोपाल, विटनेस। तो ऐसे कहा गया शास्त्रों में कि जैसे हमारी यात्रा निकली यहाँ पर, तो विद्यानगर, विद्यानगर ये साउथ इंडिया में आज जो राजमुंड्री है कोवूर, जहाँ रामानंद राज चैतन्य महाप्रभु को प्रथम प्रथम भेंट हुआ था, उसे प्राचीन काल में विद्यानगर कहते थे, जहाँ पर रामानंद राय उस जगह के वो जो गवर्नर थे। तो ऐसे कहा गया है विद्यानगर के ब्राह्मण यात्रा पे निकले, तो पहले वो पहुंचे काशी प्रयाग, गया काशी प्रयाग, बाद में मथुरा। तो ये सब ब्राह्मण सब डिवोटे जा रहे थे यात्रा में, तो ये वृद्ध ब्राह्मण थोड़ा बीमार गिर गया, होता है ना यात्रा में कभी कभी बीमार हो जाते भक्त। तो सब बोले प्रभु जी ये बहुत धीरे चल रहे, बीमार भी है। तो सबने कहा प्रभु जी हमारा उशीर होना रहा है, हम जातो नहीं पार्टी थरा, हम थोड़ा तकलीफ होगा, हम आप इतना धीरे धीरे चल रहे, आप रुकिए आराम से आइए हम आगे जाते हैं। सारे डिवोटेस निकल गए, बेचारे ओल्ड ब्राह्मण अकेला रह गया। जब आगे डिवोटे निकल गए तो यंग ब्राह्मण सोचने लगा ये अच्छा नहीं है, साथ में हम यात्रा के लिए निकले, इनको पीछे छोड़ दिया क्योंकि वो स्लो चल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। तो उन्होंने मेन यात्रा को छोड़ के वो पीछे आए, बोले आपके साथ में चलूँगा आपके साथ में। तो ये बड़े कृतज्ञ हो गए कि देखो ये मेन यात्रा छोड़ के मेरे साथ चल रहा है और मेरा सारा सेवा कर रहा है। गया काशी प्रयाग करके वो मथुरा आए, मथुरा से वृंदावन में 4-12 वृंदावन फॉरेस्ट घुमा दिया उनको, और बाद में वज्रनाभ ने एस्टैब्लिश किया हुआ सारा डीटीज दिखा दिया। उसमें एक मंदिर में गए गोपाल जी का मंदिर, जो वज्रनाभ जी ने द्वापर के अंत में ये मंदिर ये अर्च विग्रह स्थापित किए। जब गोपीनाथ मदन मोहन गोविंद जी को स्थापित किया तभी गोपाल जी को भी स्थापित किया था। तो उस मंदिर में जब ये ब्राह्मण दोनों पहुंचे, उनका वो यात्रा का लास्ट पड़ाव था, तो ब्राह्मण ने उस गरुण ब्राह्मण का हाथ पकड़ के कहा कि तुमने इतनी सेवा की, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह मेरे पुत्री के साथ में हो। उन्होंने कहा अरे ऐसा मत कीजिए, ये बिल्कुल बड़ा हुआ मैच नहीं है, आप बड़े लोग हैं मैं छोटा आदमी हूँ। क्या बड़े लोग हैं, मैच थोड़ी बड़े छोटे में होता है, मैच तो भक्ति के ऊपर होता है, तो आपका भक्ति सबसे बड़े है, मेरे से भी बड़े भक्त में आप। तो जब इतना आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि आपके परिवार वाले नहीं मानेंगे। नहीं मैं हूँ परिवार का सबसे आग्रह मेन व्यक्ति, क्यों मानेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा देखो ब्राह्मण का 6 चीज होता है उनका कर्तव्य, पठन पाठन यजन यजन दान प्रतिग्रह, दान देना और दान लेना भी। तो ये दान दे रहे थे, उनका कर्तव्य था, और सामने ब्राह्मण था उसे फोर्स करके दान लेना पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा बोल रहे हैं लेकिन कोई साक्षी तो होना चाहिए, साक्षी ये है ना भगवान, इनके सामने साक्षी करता हूँ मैं कि मैं अपनी पुत्री का हाथ आपको दूंगा। तो वो साक्षी गोपाल हो गए। फिर जब आए इधर तो जैसे आपको पता है उनके पुत्र ने जब सुना कि पिताजी ने उनकी बहन का हाथ इस फकीर ब्राह्मण को दे दिया तो बड़े दुखी हो गए, बोले क्या कर दिया आपने, कुछ स्टेटस वेटस कुछ है कि नहीं हमारा? तो उन्होंने कहा कि चलो बताइए आप दोनों के बीच में कौन तीसरा था विटनेस के लिए। बोले कोई नहीं था, भगवान थे बस, लेकिन भगवान थे ना चलते। तो उसके बाद फिर उन्होंने सरपंच को बुलाया और कहा कि ये जो ब्राह्मण है इन्होंने मेरे पिताजी का सारा धन लूट लिया, और इतना ही नहीं अभी बोलता है कि पिताजी ने इनको वचन दिया है कि उनकी पुत्री को विवाह करेंगे। इतना मूर्ख ब्राह्मण है, इनको दंड मिलना चाहिए। सरपंच ने बाद में एक कोर्ट रखा, कोर्ट ने पूछा कि भाई तुम्हारा है विटनेस कोई? है ना, कौन है? ब्राह्मण ने कहा भगवान गोपाल। भगवान गोपाल कहा, और उतने में वो ब्राह्मण का पुत्र बोला हाँ आपने गोपाल को लेके आओ, बाद में शादी करा दूंगा आपको। सबने बोला कि हाँ लेके आइए गोपाल जी को। हम सबको तो हम हंस रहे थे गोपाल जी कैसे यहाँ पर आएंगे, है ना। तो ब्राह्मण ने कहा हाँ मैं जरूर लेके आऊंगा, क्यों नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि ये ब्राह्मण को बड़ा पाप लगेगा, इसने भगवान के सामने वचन दिया है, उसको बचाने के लिए मैं जरूर लेके आऊंगा। तो भाई भगवान के पास वृंदावन आए छोड़ छोड़ के, विद्यानगर से वृंदावन। उस समय गाड़ी वाड़ी नहीं था, प्लेन में भी नहीं था, टिकट का भी प्रॉब्लम नहीं था, है कि नहीं, है कि नहीं। तो आगे वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में आने के बाद फिर क्या हो गया, भगवान से कहा चलो आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। तो भगवान तो बांसुरी बजाए हंस रहे, कुछ बोलने रहे, अरे आपको आना पड़ेगा, अगर आप नहीं आएंगे तो आप भी पाप के भागीदार बन जाएंगे। तो वो ब्राह्मण को पाप लगने वाला है, आप साक्षीदार, आपको भी पाप लगेगा। तो भगवान ऐसे हंस रहे, भगवान भी हंसने लगे। भगवान ने कहा कि देखो आप जाओ, मैं प्रकट हो जाऊंगा वहां पर और मैं साक्षी दे दूंगा। नहीं प्रकट प्रकट मालूम नहीं मुझे, मैं जाऊंगा आप नहीं आए तो ऑफिस आना पड़ेगा, मेरे साथ में चलो। तो भगवान ने कहा कभी आपने देखा है किसी अर्च वगैरह को बोलते हुए, चलते हुए? तो उसने कहा कि अगर आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो, इफ यू आर टॉकिंग यू कैन डू वॉकिंग, वॉक योर टॉक। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, कहा कि ठीक है आप आगे चलो, पीछे मैं आता हूँ, पीछे देखने का नहीं, लेकिन एंड ऑफ द डे रोज जो है मुझे आप भोग लगाइए, ठीक है। चलते चलते भगवान चलते चलते विद्यानगर के बाहर आ गए, और जब चल रहे थे पीछे भगवान की नुपुर का आवाज़ आ रहा था, तो उन्हें पता था कि भगवान पीछे आ रहे हैं, लेकिन अचानक नुपुर का आवाज़ बंद हो गया। पीछे घूम के देखा भगवान खड़े थे, तो भगवान से कहा चलो और आगे आना है आपको? उन्हें नहीं मैं इधर ही खड़े रहूँगा, सबको बुलाओ यहाँ पर। तो भाग के गए और कहा कि भगवान आ गए, भगवान आ गए। भगवान को देख के दुर्वृद्ध ब्राह्मण खुश हो गया, और सारे ब्राह्मणों को पता चला, सारे सरपंच और जो थे गांव वाले, कि सच में ये बड़ा महान भक्त है, भगवान को साक्षी के लिए यहाँ बुला लिया। सब खुश हो गए, सबको पता चला कि ये गांव में इतना अच्छा ब्राह्मण भी है सही में, और उसने अपने भक्ति के द्वारा भगवान को खींच कर वृंदावन से अपने गांव विद्यानगर में आ गए। तो विद्यानगर में भव्य मंदिर बन गया, और मंदिर काफ़ी प्राचीन काल तक, बहुत साल तक यहाँ पर उस विद्यानगर में रहा। उसके बाद जब पुरुषोत्तम देव ने जब साउथ इंडियन किंग, साउथ इंडिया राजा पर चढ़ाई की और पद्मावती से विवाह किया, तो वो क्षेत्र विद्यानगर उनके राज्य में आया, ठीक है। और पद्मावती के साथ विवाह करने के बाद डाउरी में क्या लिया उन्होंने, कांची के गणेश को लिया, जो अभी जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे वाले मंदिर में अभी भी स्थित है, और उन्होंने राधा राधाकांत ये विग्रह भी लिए, और ये गोपाल जी के साक्षी गोपाल के विग्रह को पता था उनको, बोले ये भी चाहिए मुझे। साक्षी गोपाल के विग्रह वृंदावन से विद्यानगर गए, फिर विद्यानगर से कटक गए, जहाँ पर पुरुषोत्तम देव महाराज का राजा उनका पैलेस था वहाँ पर। और चैतन्य महाप्रभु भी साक्षी गोपाल का दर्शन कहाँ पे किए, कटक में गए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु अपना उन्होंने लीला संपन्न खत्म करके चले गए वो नवदीप धाम में ओरिजिनल अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो प्रताप रुद्र महाराज की बड़ी इच्छा हुई कि उन्होंने पुरी में अपना जो स्थान केंद्रित किया कटक से, तो वो कटक से वो साक्षी गोपाल को उठाकर जगन्नाथपुरी के टेंपल में उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। अभी भी देखेंगे साक्षी गोपाल का वहाँ मंदिर है, उसी मंदिर में एस्टैब्लिश कर दिया। तो कुछ साल तक जगन्नाथ जी वहाँ पर, साक्षी गोपाल जी जगन्नाथ टेंपल में रहे। फिर एक दिन जगन्नाथ जी अपने सब एक अपने पुजारी को सपने में कहा, अरे साक्षी गोपाल को यहाँ क्यों लेके आए, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। रोज सुबह मेरा बाल भोग होता है जिसमें इतने अलग प्रकार के स्वीट्स बनते हैं, आते आते पहले ही हाथ मार लेता है साक्षी को। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि भगवान तो वही भगवान है, गोपाल जी और जगन्नाथ, लेकिन इसे कहते हैं प्रेम कला, ट्रांसेंडेंटल डिसएग्रीमेंट। ये हमारे बीच में जो एग्रीमेंट होता है डिसएग्रीमेंट, वो मटेरियल डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन ये ट्रांसेंडेंटल डिसएग्रीमेंट। क्योंकि इस ट्रांसेंडेंटल डिसएग्रीमेंट से क्या होता है, हमको फायदा होता है, ऐसा कहानी सुनने मिलता है कि नहीं। तो भगवान ने कहा इसको हरिबोल, दूसरा मंदिर बांधो उसके लिए। तो उस समय प्रताप रुद्र महाराज थे, तो उन्होंने विचार किया कि क्या करना चाहिए, इतने इम्पोर्टेंट ड्यूटी है साक्षी गोपाल। तो उन्होंने एक गांव पूरा अडॉप्ट किया और कहा कि ये गांव का नाम पड़ेगा साक्षी गोपाल। वहां बड़ा भव्य मंदिर बांधा, साक्षी गोपाल को वहां विराजमान किया। तो ये साक्षी गोपाल के मंदिर में हम इसके बाद जाने वाले हैं। साक्षी गोपाल की ऐसी कथा ये भी आती है कि साक्षी गोपाल के प्रति बड़ा प्रेम था पुरुषोत्तम देव और पद्मावती देवी को। तो पद्मावती देवी को उनके पिताजी के द्वारा एक पर्ल, क्या बोलते पर्ल को, मोती, मोती का नाक का जो रिंग है, नोज रिंग, वो मिला। तो जब नोज रिंग देखा, तो जब भक्त जब देखता है कुछ नई चीजों को, तो इमीडिएटली क्या सोचता है, भगवान के बारे में होता है। अगर आपको किसने दिया केला, तो आप क्या बोलेंगे, वाह थैंक यू, नहीं आप सोचेंगे ऑफरिंग किया कि नहीं, यानी भगवान को अर्पण किया कि नहीं। तो जो भी नई वस्तु होती है वो भगवान के बारे में भगवान को देना चाहिए। तूने कहा ये काश ये साक्षी गोपाल को मैं दूँ, लेकिन साक्षी गोपाल के नाक में छोटा सा अगर एक छेद होगा तो यूज हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा यूज। सोचा कि अभी डीटी इतनी प्राचीन है, शायद नहीं होगा, छोड़ दीजिए। तो रख लिया अपने पास वो नोज रिंग। ये इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि साक्षी गोपाल ने वो इच्छा सुन ली, और साक्षी गोपाल स्वयं वो माता जी के पद्मावती पद्मावती देवी के ड्रीम में आए, सपने में आए, और कहा कि आपकी इच्छा है कि मुझे ये आप मोती का रिंग पहनाए। तो मुझे बोलते हुए आपको अच्छा लग रहा है कि यशोदा माई ने जब मैं छोटा था ना, तो मेरे नाक में उन्होंने एक होल बनाया था ताकि वो भी एक सुंदर सा मोती का रिंग रोज लगा देती, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, कोई लगा नहीं रहा रिंग यहाँ पर, तो आपका रिंग मेरे लिए फिट होगा। तो बड़ी खुश होगी, सुबह आके देखा तो रिंग लगा दिया, फिट हो गया। तो आज भी वो रिंग है, रोज लगता नहीं है, लेकिन वो अभी भी रिंग जो मोती का रिंग है। और उस जब रिंग को लगता है तो उसमें बड़ा फेस्टिवल होता है साक्षी गोपाल मंदिर में। साक्षी गोपाल जी थे मंदिर में काफ़ी वर्षों तक, कुछ 200 वर्ष की पहले की बात है। एक कथा आती है कि साक्षी गोपाल ने वहाँ के पुजारी के सपने में आके कहा कि अरे मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरे कोई भक्त मेरे साथ में नहीं, ऑल्टर में हमेशा कृष्ण जहाँ पर होते राधा रानी होती, यहाँ राधा रानी का ड्यूटी नहीं है, राधा रानी का ड्यूटी भी होना चाहिए मेरे बगल में, क्योंकि वो मेरी पत्नी है, मेरी कॉन्सर्ट है। तो ऐसा कहा गया है कि जो पुजारी था उन्होंने राजा को कहा कैसे कुछ करना चाहिए, और विचार चल रहा था क्या क्या होना चाहिए, तो उन्होंने एक अष्ट धातु से बना और राधा रानी का ड्यूटी बना रहे थे। इसी बीच में जो पुजारी था उनके घर पर उनकी एक लड़की थी, नौजवान लड़की थी। तो उन्होंने देखा कि ये लड़की के जीवन में कुछ अलग परिवर्तन आ रहा है हाव भाव में। तो उन्होंने एक दिन रात को उस लड़की के घर पे उसके रूम पे खोला उन्होंने दरवाजा, अकस्मात सुबह उठ के देखा तो जो लड़की का जो जो सैया था उसमें बहुत सारे फूल पड़े थे और एक फ्लूट भी पड़ा था। तो ये क्या हो गया, ये कौन आया था, वो डाउट आ गया। नौजवान लड़की है और घर पे ऐसा सा दिख रहा है सब, लेकिन उनको पता था कि मेरी लड़की जो है ना वो शुद्ध है, उनका मन शुद्ध है, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। थोड़ा डाउट भी था लेकिन पता भी था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो फूल थे उनको देख के, सुगंधित फूल देख के उनको मन में विचार आ रहा है, ये फूल तो मैंने कल साक्षी गोपाल के मंदिर में चढ़ाया, यहाँ कैसे आ गया। तो थोड़ा लगा कि ये भगवान यहाँ आ तो नहीं रहे कुछ। तो ये सब चल ही रहा था क्योंकि उनकी लड़की कुछ बता नहीं रही थी उनको सीक्रेट। उतने में ये अष्ट धातु की जो राधा रानी डीटी रेडी हो गई, और जिस दिन इंस्टॉलेशन जिस दिन उनका इंस्टॉलेशन वो मंदिर में हुआ, उसी दिन वो पुजारी की जो लड़की थी वो चल बसी, शी लेफ्ट हर बॉडी। तो आचार्य कहते हैं वहाँ के डिवोटी सब कि ये जो लड़की थी वो साधारण लड़की नहीं थी, जो भगवान अकेले महसूस कर रहे थे तो साधारण स्वयं वहाँ प्रकट हुई थी अपने एक्सपेंशन के रूप में। और जब भगवान राधा रानी को लेके आए गए अष्ट धातु के रूप में, तब फिर से जो अंतर्धान हो गई वो। तो ऐसे अलग अलग लीला साक्षी गोपाल में अभी भी चल रहा है, ऐसे नहीं कि बहुत प्राचीन लीला हुई तभी वो शुरू हो रहा है, अभी भी लीला चल रहा है, यहाँ पर भी लीला चल रहे हैं, वहाँ पर भी लीला चल रहा है। और ऐसे कहा गया है साक्षी गोपाल के यहाँ पर तो गीला प्रसाद मिलता है, दाल राइस वगैरह, जगन्नाथ जी के उधर मिलता है गीला प्रसाद, कहीं भी जाओ गीला प्रसाद मिलेगा आपको, फ्रेश प्रसाद, भुवनेश्वर में जाओ मिलेगा, लेकिन साक्षी गोपाल में सूखा प्रसाद मिलता है और खास करके गेहूं का प्रसाद, चावल का प्रसाद नहीं। तो वहाँ के लोकल हेड पुजारी बोल रहे, मैंने पूछा कि यहाँ गेहूं का प्रसाद ज़्यादा क्यों मिलता है इधर, बोले हमारे भगवान साक्षी गोपाल कहाँ से आए, वृंदावन से आए, नॉर्थ इंडिया से आए, इसलिए गेहूं खिलाते ज़्यादा। और बाद में बोले कि क्योंकि भगवान अभी भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, है कि नहीं, जब आप ट्रैवल करते हैं ना तो आप सूखा प्रसाद लेके जाते हैं कि नहीं, गीला प्रसाद खराब हो जाएगा। तो बोले अभी भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, देखो पहले विद्यानगर गए, फिर विद्यानगर से कटक आए, कटक से पूरी गए, पूरी से साक्षी गोपाल यहाँ मंदिर में आए, पता नहीं कहाँ आगे ट्रैवलिंग करने वाले, इसलिए यहाँ पर हम ड्राई प्रसाद ही बनाते भगवान, इज ऑलवेज ट्रैवलिंग, तो वहाँ पर हमें सूखा प्रसाद मिलेगा आपको। तो ये साक्षी गोपाल का सुंदर कथा है, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इस धाम में आए, प्रतिदिवस कथा सुन रहे, कीर्तन कर रहे, और अनेक भक्तों का हमें संग मिल रहा है। लेकिन कितने भक्तों का संग मिल रहा है हमें, 5,500। जहाँ भी देखो भक्ति भक्त है कि नहीं, आगे भक्त पीछे भक्त, इतो भक्त परतो भक्त, यतो भक्त यतो याम इतो भक्त, सब जगह भक्त है। तो ये बड़ा एक फॉर्चून है कि धाम में रहकर हम भक्तों का संग करें भर भर के। तो बस जितने दिन हैं उतने गिन रहे हैं हम, और हम आशा करते हैं कि हम जितने बार जितने दिन तक यहाँ धाम में रहें, अच्छी चेतना से रहें और खूब सेवा करें, खूब कीर्तन करें और खूब कथा श्रवण करें, और इस तरह से हमारी यात्रा सफल रहेगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ऑन टाइम
आपके लिए सब हो रहे हैं। एक ही दर्शन है साक्षी गोपाल जी का, वहां दर्शन करके जो भी आपके तरफ से दर्शन देनी है वो दे दीजिए और फिर बाहर आ जाइए। और एक लास्ट बहुत प्रमुख इंस्ट्रक्शन है, आपकी चप्पलें इसी मंदिर में छोड़िएगा, वहां अलारनाथ में लेके जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे वो चप्पल के लिए अलग से दर्शन होते हैं। तो चप्पलें यहीं छोड़िए, दर्शन कीजिए, दर्शन करके यहाँ चप्पलें लीजिए और जल्दी से जल्दी बस में बैठ के साक्षी गोपाल जाइए। जय श्री गोपाल की।
हरे कृष्ण।